ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए सीधे एक बड़े से विला के बाहर आकर रुका। उस विला के बाहर एक काफी बड़ा सा गार्डन था। विला का मेन गेट ऑटोमैटिक सिस्टम पर था। जैसे ही कार विला के मेन गेट पर आकर रुकी, वो गेट अपने आप ही ओपन हो गया। उसके खुलते ही ड्राइवर कार अंदर ले आया। इप्सिता खिड़की से बाहर की तरफ उस पूरे विला को देख रही थी, जो दिखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। इप्सिता उस विला और उसके आसपास की हर चीज़ को देखकर मुस्कुराती जा रही थी। अभिमन्यु इप्सिता को खुश देखकर बोला, क्या बात है इप्सिता, क्या सोच रही हैं आप? अभिमन्यु की आवाज़ सुनकर इप्सिता उसकी तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं, हम तो बस यही देख रहे थे कि आपका ये विला वाकई में बहुत खूबसूरत है। हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुंबई में भी आपकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही कार उस विला के सामने आकर रुकी, तभी भागता हुआ एक आदमी आया और उसने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला। पहले अभिमन्यु बाहर निकला और फिर इप्सिता। इप्सिता के हाथ में अपना छोटा सा बैग था और उसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था। वो अपना पर्स लेकर अभिमन्यु के साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ी ही थी, तभी उस आदमी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, वेलकम कुंवरसा, जैसा कि आपने कहा था, हमने विला को बिल्कुल वैसे ही अरेंज कर दिया है। मैडम जी का कमरा भी बिल्कुल सही से डेकोरेट कर दिया है, आप लोग अंदर चलिए। वो आदमी उस विला की देखभाल करने वाला आदमी था। जैसे ही इप्सिता और अभिमन्यु विला के अंदर गए, उन्होंने देखा वो विला बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बना हुआ था। इप्सिता को इन सब चीज़ों की आदत थी, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो सब चीज़ें उसे जानी पहचानी सी लग रही थीं। अभिमन्यु विला के हॉल में बैठ गया। उसे ऐसे बैठे देखकर इप्सिता भी उसके बगल में लेकिन थोड़ी सी दूरी पर बैठ गई। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत किचन से बाहर निकली। उनके हाथ में ठंडे पानी का ग्लास था। उन्होंने उसे टेबल पर रखते हुए कहा, कुंवरसा, पानी। अभिमन्यु ने उस अधेड़ उम्र की औरत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे शांता काकी, कैसी हैं आप? वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, बस ठीक हूँ कुंवरसा, आपकी और रानीसा की दया है। वैसे यही है क्या राजवंशी परिवार की होने वाली बहू रानीसा? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और इप्सिता उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। वो औरत बड़ी ही प्यार भरी नज़रों से इप्सिता की तरफ देखकर बोली, बहुत सुंदर हैं आप बहू रानीसा। अभिमन्यु उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे काकी, अभी हमारी शादी हुई नहीं है, आप इप्सिता को मैडम या उनके नाम से भी बुला सकती हैं। अभिमन्यु की बात सुनते ही शांता ने जल्दी जल्दी अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं कुंवरसा, कैसी बात कर रहे हैं आप, और वैसे भी अगर शादी नहीं हुई है तो कुछ दिनों बाद तो हो ही जाएगी, है ना? अभिमन्यु कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी इप्सिता ने अभिमन्यु और उनके बीच में बोलते हुए कहा, इट्स ओके आंटी, आपको जो ठीक लगे आप बोल दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इप्सिता की बात सुनकर अभिमन्यु उसकी तरफ बड़ी प्यार भरी नजरों से देखने लगा तो उसने अपनी पलकें झुका दीं। इप्सिता ने पानी का ग्लास उठाया और पानी पीकर उठकर खड़े होते हुए बोली, शांता आंटी, हमारा रूम कौन सा है? एक्चुअली हमें फ्रेश होना था। शांता इप्सिता की बात सुनकर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों हमारे साथ चलिए, हम आप दोनों को आपका कमरा दिखा देते हैं। अभिमन्यु उठकर खड़ा हुआ और इप्सिता के साथ सीधे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगा। पहले फ्लोर पर पहुंचते ही सीढ़ियों की राइट साइड में बने दो बड़े मास्टर बेडरूम थे। उनमें से एक बेडरूम के अंदर जाकर शांता ने चारों तरफ देखते हुए कहा, बहुरानीसा, ये आपका कमरा है, आपकी ज़रूरत का सारा सामान यहाँ पर है और थोड़ी देर में हम आपके कपड़े भी सेट कर देंगे। अभिमन्यु इप्सिता के पास आकर बोला, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप शांता काकी से उस बारे में पूछ सकती हैं, शांता काकी बहुत अच्छी हैं। अभिमन्यु की ये बात सुनकर इप्सिता उनकी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा दी। तभी शांता अभिमन्यु के साथ बाहर निकली और उसने इप्सिता के जस्ट बगल वाला रूम अभिमन्यु को दिखाते हुए कहा, कुंवरसा, हमने आपका सामान बहुरानी के बगल वाले रूम में रखा है, उन्हें अगर किसी चीज़ की परेशानी हो तो वो आपको बता सकें, हमने ठीक किया ना? अगर आपको ये रूम नहीं चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, हम आपके लिए दूसरा रूम अरेंज करवा देंगे। अभिमन्यु ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है काकी, ये रूम ठीक है। शांता अभिमन्यु को वहीं उसके रूम में छोड़कर वहां से बाहर निकल गई और अभिमन्यु फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के अंदर चला गया। वहीं इप्सिता फ्रेश होकर बाहर निकल आई और उसे अब काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो वहीं बेड पर आराम से बैठ गई। उसने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और कहा, सबसे पहले काम करते हैं, उदय भाई को मैसेज कर देते हैं कि हम यहाँ पर सही सलामत पहुँच गए हैं, वरना वो बेकार में ही परेशान हो रहे होंगे। इप्सिता इतना बोलकर उदय को मैसेज करने लगी। जैसे ही उदय ने उसका मैसेज देखा, उसने तुरंत उसे कॉल बैक करते हुए कहा, हाँ ईशु, आप ठीक से पहुँच गई ना? इप्सिता ने कहा, हाँ भाई, हम यहाँ पर मिस्टर अभिमन्यु के साथ हैं, उनका यहाँ पर एक विला है और हम यहीं पर रुकने वाले हैं। उदय ने थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हुए पूछा, लेकिन ईशु, आप तो वहाँ अपने हॉस्टल में रुकने वाली थी ना, और आप हॉस्टल नहीं जाएंगी तो फिर वहाँ से आपको एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम नहीं होगी? इप्सिता ने कहा, नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली अभिमन्यु ने हमसे कहा है, जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले वैसे ही अभिमन्यु की मासा का फ़ोन आया था।
इप्सिता ने उदयवीर को पूरी बात बता दी कि किस तरह से मासा का फोन आया और उन्होंने इप्सिता से जो बात की और अभिमन्यु ने जो कहा सब बात उदय को बता दी। उदय उसकी पूरी बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। उसने इप्सिता की पूरी बात सुनकर कहा, ठीक है ईशु, आप थोड़ा आराम कर ले, हम आपसे बाद में बात करते हैं। एक्चुअली हमें एक मीटिंग अटेंड करनी है और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी प्रेजेंटेशन बनानी है। जैसे ही हम फ्री होंगे हम आपको दोबारा कॉल करेंगे, ओके? इप्सिता ने कहा, ठीक है भाई, जाइए आप। इतना बोलकर इप्सिता ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी इप्सिता की नज़र नंदिनी के नंबर पर गई और उसने तुरंत नंदिनी को कॉल किया। नंदिनी ने जैसे ही इप्सिता का फोन आते देखा, उसने तुरंत उसका कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो ईशु, कहाँ है तू, यहाँ पहुँची या नहीं? इप्सिता ने नंदिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ पहुँच गए हैं हम, अभी फ्रेश होकर बैठे हैं तो हमने सोचा आपसे बात कर लें। नंदिनी उसकी बात सुनकर कन्फ्यूज होते हुए बोली, एक मिनट, क्या कहा तुमने, तुम फ्रेश हो गई हो? तुम कहाँ रुकी हो? क्योंकि मैं तो सुबह से हॉस्टल में हूँ, आज मैं कहीं भी बाहर नहीं गई, तो तुम यहाँ पहुँची नहीं, फिर कहाँ तुमने स्टे कर लिया? नंदिनी थोड़ी सी कन्फ्यूज हो गई थी। तभी इप्सिता ने उसकी कन्फ्यूजन दूर करते हुए कहा, अरे आप इतनी कन्फ्यूज क्यों हो रही हो, हमारी बात ध्यान से सुने। एक्चुअली हम अभिमन्यु के साथ आए हैं तो उनकी मासा ने हमें एक साथ ही रहने के लिए कहा है, इसीलिए हम उनके विला में उनके साथ हैं। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी वो बिल्कुल शॉक्ड होते हुए बोली, क्या तुम जीजू के साथ हो? यार मैंने तो सुना था कि लोग कहते हैं कि शादी से पहले लड़का लड़की एक साथ नहीं रहते, लेकिन तेरे ससुराल वाले तो बड़े ही मॉडर्न सोच के लग रहे हैं, एक साथ रहने की परमिशन दे दी। इप्सिता ने नंदिनी को डांटते हुए कहा, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है, एक्चुअली हम और अभिमन्यु अलग अलग रूम में हैं, बस हमें उनके साथ रहना है, इतना बोला था हमने, एक ही रूम में नहीं रह रहे। आप हर चीज़ को गलत तरीके से क्यों सोचने लगती हो?